हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के 15वां अध्याय अर्थात पांडवों का सामयिक प्रस्थान, टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडवा, ये वाले अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में जो सुवादी के हम बनने कोशिश करें कि महाराज युधिष्ठिर जब उनको ये पता लग गया कि भगवान महाराज राम से प्रयाण कर रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और भजनाथ को मथुरा का राजा बना दिया, और इस तरह उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। और उनकी कोई रुचि है राजपाट में या भौतिक संसार में बिल्कुल रही नहीं गई। उन्होंने कितने पहन लिए, मैंने छठे पुराने वक्त पहन लिए, गोद भोजन करना बंद कर दिया, ध्यान पूछ कर भूमि बन गए, बालों को खोल दिया उन्होंने, और एक दिन से उज्जवल और पैसा भी जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसका कोई नियोजन नहीं होता संसार में, कहीं कोई व्यक्ति जैसे होता है, तो उस तरह से वो हो गए। और वो किसी वक्त के लिए अपने भाइयों पर भी आश्रित नहीं रहे और बिल्कुल बहन मनुष्य की तरह कुछ भी सुनने लगे। फिर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा सूर्य पथ पर चलते प्रस्थान किया, जिससे परमेश्वर के विचार में पूर्ण लग सकें और वे जहाँ कहीं भी गए वो इसी तरह से रहे। फिर महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने जब देखा कि कलयुग का पहले ही संसार घर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उसी की श्रेणी में यह है शरीर में उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे पांडवों ने कहा, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरण लक्ष्य हैं, अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। कली का प्राधान्य इरेगुलर या फिर इरेलिजियस प्रैक्टिस अधार्मिक कृत्यों द्वारा देखा जाता है, और जैसा आचार्य कहते हैं कि ये कलयुग जो है किसी सेम में उनकी विद्यमान व्यक्ति या फिर सत्य व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं, ये संसार और पर्टिकुलरली कलयुग में किसी सत्य व्यक्ति के रहने की जगह ये है नहीं, क्योंकि जब वो अधर्म द्वारा प्रभावित होते हैं तो नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है और उसके चलते अराजकता का बोलबाला फैलने लगता है, और ऐसे में फिर कोई व्यक्ति अपने को धार्मिक सिद्धांतों के पालन करते हुए ठीक से रख पाया ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा हम स्वयं पा रहे हैं आजकल। भागवतम में जैसा हम सुने हैं कि तीन स्थितियां जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएंगी, एक तो दुर्भिक्षता की अर्थात मांगे से भी भिक्षा नहीं मिलेगी, धीरे 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 ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जैसे जैसे कली का होगा तो वैसे वैसे कोई चाहते भी उसको जो है भिक्षा नहीं मिलेगी, और बारिश नहीं होगी, और होगी तो असमायिक होगी, अर्थात वो भी जो फसल को लाभ नहीं पहुंचाएगी, वो भी तो ऐसी होगी या फिर टाइम से नहीं होगी। और तीसरा होगा कि जो सरकारें आएंगी वो किसकी भी सरकारें आएंगी वो कोई राहत नहीं देंगी, वो हाई टैक्सेशन टैक्सेशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में ये भुखमरी जैसे स्थिति जो है फैल भी जाएगी धीरे धीरे। और होगा क्या कि कलयुग के प्रथम चरण में, कलयुग का जो प्रथम चरण होता है शुरुआती चरण होता है, इसमें रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जब कलि अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो तमोगुण का बोलबाला हो जाता है। और जैसा हम देख सकते हैं आजकल कि लोग जो है, रजोगुण का मतलब है मोड ऑफ पैशन, अर्थात कमाना है चाहे जो हो जाए कैसे भी हो जाए, ये प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करने की बहुत ही, जिसको बोलते हैं तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, रजो रागात्मक नृत्य कृष्णा संग समुद्भवम तद निगनाथ पहुंचे कर्म संगीन देवन, कि रजोगुण की उत्पत्ति जो है वो कृष्णा और असीम इच्छाओं या आकांक्षाओं से होती है। और ये इस तरह देहधारियों को यहाँ बांध देता है। और जहाँ तमोगुण की बात है, समाप्त तो अज्ञानजन ऋषि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस निद्रा निद्रा भी तत् निर्गुनाथ भारत। और जो तमोगुण का प्राकट्य है वो अज्ञान द्वारा मोहग्रस्त हो जाने से होता है। तो ये दोनों चीजों को हम आज की उसमें बड़े आराम से देख सकते हैं। प्रमाद माने पागलपन, आलस और नींद, ये चीजें बड़े आराम से देखी जा सकती है। इस तरह की इनका प्रिडोमिनेंस आजकल किस तरह से है, ये अज्ञान द्वारा मोहित करके बांधने वाला जो कार्य है, इसको जरा हम ठीक समझें तो बड़े आसानी समझ सकते हैं कि जीव हर क्षण कष्ट पा रहा है, हर क्षण सफरिंग इज गोइंग ऑन रेगुलरली कंटिन्यूसली, लेकिन ये कष्ट की अनुभूति हर क्षण नहीं होती है। जब कष्ट जो है सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तब जीव अनुभव करना शुरू करता है कि हाँ मुझे कष्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, सफरिंग इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक चेतना और मानवीय चेतना में जो फर्क करने वाली स्थिति है वो यही है कि जो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी कष्ट पा रहा है और कष्ट को अनुभव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो मनुष्य शरीर में रहते हुए पार्श्विक चेतना में है। क्योंकि आप देखिए, ये कोई जैसे कुत्ता जा रहा है, उसको किसी कार ने मार दिया, उसका पैर टूट गया, थोड़ी देर चीखा चिल्लाया वो, फिर उसके बाद फिर भी कर्म मृत्य हो गया, यहाँ सुनना सामना शुरू कर दिया, जो कुछ मिल जाए खाना पीना शुरू कर, भूल गया किसी क्या किसने चोट मारी, कब लगी, क्या अगेन भी लग सकती है। तो सफरिंग होगा। सिमिलरली जब हमारे ऊपर कुछ बीतती है तो हम थोड़ा बहुत मजे होते हैं और उसके बाद में हम फिर भूल जाते हैं, फिर भी कार्य लग जाते हैं, भोग नृत्य इंद्रित फिर भी लग जाता है। तो ये जो है ये मोहग्रस्त अवस्था अज्ञान द्वारा उत्पन्न जो है ये तमोगुण का प्राप्त करते हैं, मतलब अंधकार में है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे जगत में अंधकार अंधकार ही है और सूर्य चंद्रमा या बिजली जब होती है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, उसी तरह से इस शरीर में सफरिंग है पूरे टाइम, लेकिन जब सफरिंग रिलेटिवली थोड़ी कम हो जाती है तो हम उसको सुख अनुभव सुख मान लेते हैं। भौतिक जगत में सुख तो है ही नहीं, ये बनाया ही इस तरह गया है कि इसमें दुख मिलना ही है, हर क्षण मिलना है, लेकिन इसमें सुख की अनुभूति तब होती है जब रिलेटिवली जो दुख है थोड़ी राहत मिल जाती है। वही उदाहरण कि पहले जो राजा लोग जो पनिशमेंट देते थे तो वो कहते कि नाव में जाके किसी व्यक्ति को समुद्र में ले जाते थे, उसको डुबोते थे और डुबो के फिर ऊपर निकालते थे, ऊपर निकालते थे तो उसको जो राहत एक क्षण के लिए उसे जो होती थी, उसी तरह की राहत हम सबको जो है मिलती है जब थोड़ा दुख कम हो जाता है, उसी को हम सुख मान लेते हैं। अदरवाइज वस्तुतः सुख है ही नहीं, क्योंकि शरीर परिवर्तन हर क्षण हो रहा है और हर क्षण शरीर परिवर्तन में कष्ट हो रहा है। ये शरीर परिवर्तन जो हो रहा है वो परिवर्तन में इतनी कष्ट हो रहा है और इसी में हम बुढ़ापे में फिर बीमारी में फिर धीरे धीरे जो है मृत्यु के मुंह में अग्रसर कर जाते हैं। तो ये कलयुग के जो प्रभाव हैं इनको हम बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे युग में कोई सेन में रहना नहीं चाहता है। अतः पांडवों ने भी ये निश्चय कर लिया कि जब कली का प्राधान्य आ ही चुका है तो फिर हमें भी जो है, जैसे उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने डिसाइड किया, जैसे हमें भी अब चलना चाहिए यहाँ से। उनका अटैचमेंट दुनिया से छूट गया, उनको किसी भी तरह की रुचि संसार में रह नहीं गई। एक तो भगवान चले गए, फिर भगवान के जाने के बाद में फिर जो है लोगों में जो है अधार्मिक कृत्य इनकी बढ़ावा आ गया। फिर उनके भाई ने जब ये डिसाइड कर लिया तो फिर उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि हमको ऐसा ही करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज भी शायद यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने किसी भाई को राज्य नहीं सौंपा और अपने प्रपौत्र को उनको सौंप दिया, पौत्र को। तो इसलिए उनके भाइयों ने भी ठीक से समझ लिया कि शायद भगवान की इच्छा है और इसलिए हमें जो है यहाँ से चलना चाहिए। और उन्होंने भगवान के चरणों में आश्रय लेने का निश्चय किया। यहाँ आ रहा है कि उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। पहले क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो प्रजा रक्षण अर्थात प्रजा की रक्षा करना और उत्पातियों को दंड देना, तो ये कर्म ही उनके लिए धर्म था। और इन्होंने पांडवों ने हम देख सकते हैं बखूबी से निभाया, शौर्यम तेजो धृतराक्षम उद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। इस क्षत्रिय के जो गुण बताए गए हैं तो ये सारे इस स्वभाव से जब व्यक्ति जीता है तो वो अपना धर्म स्वतः निभा लेता है। यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कारमेव तत्, यज्ञ दान तप पावनान मनीष नाम। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ दान और तपस्या कभी भी अपने जीवन में न छोड़े, इन कार्यों को करता ही रहे, क्योंकि यज्ञ दान और तप जो है मनीषियों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। तो पांडवों ने राज्य यज्ञ भी किए, दान वो नियत करते रहे और तपस्या का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि तपस्या का मतलब है सरल जीवन या सत्यनिष्ठ जीवन। पांडवों जितना सत्यनिष्ठ जीवन किसी ने बताया हम भली बात जानते हैं, चाहे वो लाक्षा ग्रह की घटना हो, चाहे वो दूध कीड़ा हो, चाहे वो द्रौपदी वस्त्र हरण हो, लेकिन उन्हें उनकी जो स्थिति बनी जब ये डिसीजन हो गया कि भाई आपको दुर्योधन के सेवक की तरह रहना है, उनके आप दास हो, तो उन्होंने दासता हमें स्वीकार कर ली। नहीं तो वो चाहे तो ये दुहा भी छोड़ सकता था राज्यसभा में, लेकिन नहीं छोड़ा, वो समर्थ थे। मेन चीज क्या होती है कि व्यक्ति अपने शत्रु से कमजोर हो और तब उस पर वार न करे तो ये धीरूपन है अर्थात कायरता। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह से शत्रु पर प्रबल भी पड़े और फिर भी शत्रु को वार न करे, उसको मौका उबरने का देता रहे, तब वो है वीरता कहलाती है। तो पांडवों ने एक तरह से दुर्योधन को और इन सबको पूरा चांस दिया पूरा, और वो यहाँ तक भी आ गए कि भाई कुछ नहीं होता है, लोग कहते हैं कि उन्होंने युद्ध डालने की कोशिश नहीं करी या भगवान ने युद्ध डालने की कोशिश नहीं करी, कैसे आप कह सकते हैं इस बात को, जब उन्होंने सिर्फ यहाँ तक कह दिया कि हम पांच भाई हैं, हमें पांच गांव दे दो। खेती कर नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे स्वभाव से क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खेती थोड़ी करेगा, वो तो वैश्य करेगा। तो उन्हें जीने के लिए पांच गांव चाहिए थे जिससे कुछ टैक्सेशन से उनका घर द्वार चलता रहता। लेकिन जब ये कह दिया गया कि आपको पैर रखने की तो बात क्या है, सुई नाम सुई की नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं दी जाएगी, तो युद्ध निश्चय हो गया था। अर्थात उन पर युद्ध थोपा गया, वो पूरी तरह से सहनशील बने रहे, क्षमाशील बने रहे, हम देख सकते हैं। कहां महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, कहां अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, और ये सब होते हुए विराट नगरी में जाके वो जो है एक बिल्कुल नौकर की तरह छिपे होके कार्य करना, ये सरलता नहीं विनम्रता नहीं तो क्या है, कितनी बड़ी ऑस्टेरिटी परफॉर्म करना। तो ये उनके सरल स्वभाव सत्य निष्ठा का परिचय है पांडवों के। और वनवास में रहना वो भी 12 साल तक सिर्फ छुपके रहना, सत्य निष्ठा की देखिए पराकाष्ठा यहां देखी जा सकती है कि जैसे ही 12 दिन हुए और 13वां दिन बीता ये दूध कीड़ा के बाद में, तो अर्जुन और भीम ऋषि महाराज के पास पहुंचे और बोले कि विशेष परिस्थिति में एक दिन को एक साल गिना जा सकता है, इसलिए ये 12 दिन हो गए 12 साल हो गए और एक दिन हो गया वो जो है 13वां दिन जो हो गया वो 13वां साल हो गया, अज्ञात बात हो गया, और हम जो है अपने राज्य का दावा ठोकते हैं। किससे? दुर्योधन से। भीष्म देव ने भी यही बात कही, भीष्म देव ने भी ये बात इधर जाकर दुर्योधन से कही कि भाई विशेष परिस्थिति में एक दिन को एक वर्ष गिना जा सकता है, आपकी जिद भी पूरी हो गई और ये जो आपने खेल खेला वो भी पूरा हो गया, अब उनका जो राज्य दे दो और उन्हें स्थापित कर दो। तो दुर्योधन तो मानने वाले थे नहीं, उनका बस चलता तो एक वर्ष को 10 वर्ष बना देते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की सत्यनिष्ठा देखिए कि युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, जो हमने जुए में जो हारे हैं या फिर जो हमें वनवास हुआ है वो 12 महीने, वो महीने जो 30 दिन का एक महीना होता है उसमें भी कुछ कोताही नहीं बरती, कोई कंप्रोमाइज नहीं सिद्धांत से। वो 30 दिन का जो एक महीना होता है और वो जो 12 महीने का एक साल होता है, ऐसे 12 साल हमें वनवास में काटने हैं और वैसे ही एक साल हमको अज्ञातवास में काटना है, तब जानना कि हमारा ये वनवास ये पूरा हो गया जो भी हम हारे हैं। तो भीम और अर्जुन बड़े ही मैंने उद्विग्न मन से लौट गए, ये भाई भी क्या करते हैं, देखो अच्छा खासा 12 दिन कट गया था, चलते लड़ते लड़ते ले लेते। तो ये सत्यनिष्ठा देखी आखिरकार, और सत्यनिष्ठा इसमें अर्जुन और भीम की भी है, नकुल सहदेव की है कि वो अपने बड़े भाई की बात मानते रहे, कि उन्होंने जो कहा वो मानते रहे उनको पिता तुल्य एकदम से। लेकिन आजकल कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं कोई बड़ा भाई कहे नहीं मानते तेरी बात, समझाते हैं जो भी है। तो ये उनका अपने बड़े भाई के प्रति भी धर्म परायण रहना, अनुशासित रहना, ये भी उनके भाइयों का जो है ये दिखाता है कि उन्होंने धर्म के नियम जो है किस तरह संपन्न पूरे किए पांडवों ने। तो इस तरह उनकी नितांत शुद्धि होती रही, जीवन जितना ही सरल होगा शुद्धि उतनी ज्यादा होगी, और सिद्धि जितनी ज्यादा जीवन में होगी उतना ही सरल जीवन बिताने की इच्छा करेगी, ये आप भली बात जान सकते हैं। जैसे जैसे नेचर का कंटेमिनेशन बढ़ता जाएगा, ये भोग वृत्ति बढ़ती जाएगी, कंटेमिनेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे हम जीवन को और कठिन बना लेंगे, और कठिन जीवन का मतलब है भगवान से दूर, और भगवान से दूर का मतलब यह है रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, और रिपीटेड बर्थ एंड डेथ का मतलब यह है कि रिपीटेड सफरिंग। चिंताम प्रणयाम उपाश्रिता, चिंताम अप्रणयाम प्रलयानम उपाश्रिता, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी तब तक अपरमेय इतनी चिंताएं लगी रहेंगी जिनका कोई नाप तौल नहीं है। काम उपभोग परमा एता बात इस निश्चिता, काम अर्थात काम ही सब कुछ है ऐसको परम मानकर, एता बात इस निश्चिता, ये अशुच व्रत करने अशुच कर्म करने का गण लिए रहेंगे, ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। और उसका परिणाम भी ये है कि जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी, महाविष्णु सबको जब तक अपने में नहीं इनहेल कर लेंगे तब तक अपरमेय चिंताएं असीमित चिंता में लगे रहेंगे। तो कोई भी सेम में जो है इस कलयुग में रहना नहीं चाहेगा, यदि व्यक्ति थोड़ा बहुत भी बुद्धिमान है और थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करना चाहे तो अपने आज प्रभुपाद ने कहा कि यदि भगवान में किसी को विश्वास नहीं, व्यक्ति इंटेलिजेंट तो सब है लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेंट हो जाए, प्रभुपाद कहे कि थोड़ा ऑब्जर्वेंट होके निरीक्षण करते हुए व्यक्ति अपना जीवन जिए, आस पास की ज्यादा नहीं, अपने इधर चार घर और पीछे आगे के चार घरों के आस पास की होने वाली घटनाओं को थोड़ा सा निरीक्षण पूर्वक व्यक्ति निरीक्षण करते हुए अपनी जिंदगी जिए, प्रभुपाद बोले बहुत लंबा समय नहीं लगेगा उसको इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि भगवान होता है। और यह भी निष्कर्ष पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि संसार दुखालय है। लेकिन आचार्य यही कहे, अज्ञान में ऐसे मोहग्रस्त जीव हो जाता अपनी स्थिति से कि वो जानना ही नहीं चाहता, वो जानने को राजी नहीं कुछ भी। माइंड इज ए टाइम ट्रेवलर, माइंड टाइम ट्रेवलर है। तो क्या करता है, जब पास में जाता है तो लिमिटेशन, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, पास की घटनाओं के लिए कभी ऐसा बहुत ही कम बार होता है या शायद नहीं होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, और बहुत बड़ा काम किया भी तो क्या किया, कुछ नहीं किया। ये भक्ति भी अच्छी तरह संपन्न करी तो भक्ति आज की तारीख में बढ़नी चाहिए, तो वो लगेगा वो इधर करी थी पीछे भक्ति उसमें सुधार की गुंजाइश थी, होगा लिमिटेशन है। फ्यूचर में जाएगा तो भाई, और प्रेजेंट में रहेगा तो अटैचमेंट, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे और ये गाड़ी बंगला, ये सब। देहापत्र कलकादेशु आत्मसैन्य तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपने पश्यति। ये अपनी देह को और अपनी देह से जो सैनिक उत्पन्न हुए हैं, पुत्र पुत्री या उनसे जो लगे हुए सैनिक जैसे पत्नी, इन सबको व्यक्ति ये समझता है कि ये सैनिक हमें बचा लेंगे और उनको मृत्यु के मुंह में जाते हुए भी देख करके वो नहीं देख पाता है कि ये सब मरने जा रहे हैं और नहीं देख पाते। तो ऐसी ही जो मोहग्रस्त अवस्था अटैचमेंट आती है जब माइंड प्रेजेंट में होता है, तो आइदर ये माइंड जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंथ में या टाइम में जब भी ट्रेवल करता है तो वो इस तीन शोक मोह भय लेके आता है। लेकिन यस्याम भय सूर्य मारायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापहा, कि उस भागवतम के इस भागवतम के सुनने से परम पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो शोक जो मन के पास में ट्रेवल करने से उत्पन्न होता है और मोह जो प्रेजेंट में रहने से उत्पन्न होता है और भय जो फ्यूचर में ट्रेवल करने से उत्पन्न होता है उसको नष्ट कर देती है श्री कृष्ण की भक्ति। और श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न किससे होती है? भागवतम के श्रवण से। तो कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानाधिवीश है कलौ नष्ट दिशा में पुराण को अनुमोदिता। जब कृष्ण धर्म और ज्ञान के साथ में धराधाम से चले गए तो कलयुग का जैसे ही पदार्पण हुआ तो ये व्यास देव ने क्या देखा कि सारे लोग जो है एकदम अंधकार में है। तो पुराणो अधनो उदिता, ये भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो कलयुग में जब हमें अब रहने को मिल ही गया है तो हम इतने उन्नत चेतना वाले व्यक्ति नहीं हैं या इतने हम वैराग में नहीं है कि हम पांडवों की तरह प्रस्थान कर लें 50 वर्ष के होने के बाद भी, लेकिन भागवतम की शरण हम ले लें तो ये भागवत रूपी सूर्य है ये कलयुग के अंधकार को नष्ट कर सकता है। और भागवत के श्रवण और अध्ययन से जो शोक मोह भय की स्थिति है और जो कलयुग में और भी ज्यादा भीषण हो जाती है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो अब इसमें आता है तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। अतएव अनुवाद में है, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। पांडवों का यह निर्णय यहां बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो जैसा हम समझे कि कलयुग में रजोगुण और तमोगुण इसका प्राधान्य हो जाता है, भागवतम में आता है रजस तमोभ्याम आचित्तम विमूढ़ मन आत्मन, कि रजोगुण और तमोगुण है वो मन को बहुत ज्यादा विचलित करता है, बहुत इतना ज्यादा विचलित कर देता है कि मन को शांति की कोई संभावना नहीं दिखती है। रजस तमोभ्याम आचित्तम विमूढ़ मन आत्मन, मन को विमूढ़ बना देता पूरी तरह से। लेकिन होता क्या है, यह छेद धारया धीरा हंत आपत कृतम मलम, लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण से अटैचमेंट से जो मन में मल आता है उसको हंत मन नष्ट किया जा सकता है, इससे भगवान के चरणों का ध्यान करके। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो पहले भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया जाए, उनके चरणों का ध्यान, जितना ही आप ध्यान करेंगे उतना ही आप प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। जैसे ही भक्त का ध्यान भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाता है भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकलता है भगवान की उसकी रक्षा के लिए। जैसे ही कोई भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है आप समझिए पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि भगवान के चक्र उसी समय निकलता है उसकी रक्षा के लिए, लेकिन आवश्यकता है समर्पण की, प्रोटेक्शन उसको हर हालत में मिलेगा, अर्थात उसका अधम योनियों में पतन होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी यदि भगवान का चरण भगवान के चरण किसी व्यक्ति ने पकड़ लिए हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में 7 अध्याय से भगवान कहते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। एसाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दुंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धर्मता। ये श्लोक है 7 अध्याय का 28वां। एसा मन जिनके एसाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप कर्म छीन हो चुके हैं, अंतगत माने नष्ट प्राय हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम और पुण्य कर्म जित हो गए ते माने वो लोग धुन्न मोह निर्मुक्ता वो संसार के धुन्नों से मुक्त होने लगते हैं। संसार के जो धुन्न है ये हमें मोहग्रस्त करते हैं। यह संसार में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, हर चीज जो है यहां पर रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है। और वो रिलेटिव होने के नाते जो द्वंद क्रिएट होते हैं वो द्वंद मोहग्रस्त करते हैं, और वो द्वंद जो मोहग्रस्त करते हैं तो वो द्वंद के मोहग्रस्त होने की वजह से व्यक्ति भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाता है। वो ऐसे घुमाते रहते हैं कि व्यक्ति के अंदर भक्ति का, भगवान की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे ये पुण्य कर्म उदित होते हैं और पाप कर्म क्षीण होते हैं वैसे वैसे भगवान की भक्ति में भक्त स्थिर होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए यहां जो कहा गया कि उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे अर्थात इस तरह उनका चित्त शुद्ध हो गया था, तो पांडवों के लिए भगवान की भक्ति में स्थिर होना कोई मुश्किल कार्य नहीं था, उनके लिए बहुत सहज था। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म किए थे, इसलिए पाप कर्मों के फलों से मुक्त थे। स्पष्ट है कि जिनको भगवान का सानिध्य इस जन्म में साक्षात मिलता रहा और भगवान ही जिनके गुरु बने रहे उनसे ज्यादा पुण्य कर्म किसके हो सकते हैं। जिनके भगवान संबंधी भी थे और जिनके गुरु भी थे और सब तरह से भगवान संरक्षक भी थे तो वो निश्चित रूप से पुण्य आत्मा थे, इसलिए वो पाप कर्मों के फलों से मुक्त थे। ये पाप कर्मों के फलों से व्यक्ति जब तक मुक्त नहीं होता है तब कभी भक्ति क्यों नहीं स्थिर हो सकता है, इसको थोड़ा समझिए। देखिएगा इस संसार में चाहे पुण्य कर्म का फल हो चाहे पाप कर्म का फल हो वो बांधता कैसे है, ये कल मैं थोड़ा सा सोच रहा था तो मुझे जैसे समझ में आया वैसे मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या लेकिन पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया और उसके धनवान होने का उसका प्रारब्ध बन गया, उस पुण्य कर्म के फलित होने के स्वरूप उसका धनवान होने का उसका प्रारब्ध अर्थात भाग्य बन गया। अब इस जन्म में आके जब वो धनवान बनेगा, अगेन ये भी रिलेटिव पोजिशन है, धनवान एक से एक पड़े हैं, तो वो धनवान कोई व्यक्ति जो है बिना देखिए धार्मिक कार्य संपन्न करने से तो कोई धनवान बन नहीं जाएगा। कि धर्म के हिसाब से जब पूरी तरह चलता रहे और धनवान बन जाए संभव नहीं है, कहीं ना कहीं अनियमितता जरूर आएगी। धनवान होते हैं वैसे लोग, व्यापारी लोग जानते हैं, और वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण जो है मिश्रित होता है, ये सतोगुण भी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये शुद्ध अवस्था नहीं है। अर्थात वो जो पुण्य कर्म का फल था वो इस जन्म में जब फलित हो रहा है धनवान होने के रूप में, तो ये वो पुण्य कर्म का फल इस जन्म में पाप कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा है, क्योंकि आपका प्रारब्ध क्या बन गया था, धनवान होना, और धनवान होने के लिए आप अनियमित कार्य करने पड़ेंगे, अदरवाइज धनवान नहीं हो सकते। और भी कह रहे हैं लोग आजकल क्या कहते हैं लोग, आजकल हाई सैलरी पेड पर्सन हो सकता है करोड़पति बन जाए इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी करके, लेकिन करोड़पति हूं मैंने ज्यादा करोड़पति व्यक्ति जो बिना अनियमित कार्य किए नहीं बन सकता, अर्थात बिजनेस में कुछ ना कुछ बिजनेस में चलता है, बिजनेस में करना ही पड़ता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को पिछले जन्म में पाप कर्म का फल मिला, कुछ व्यक्ति ने पाप कर्म किया और उसको इस जन्म में निर्धन होने का, लेट्स से सुदामा जी ने उसी जन्म में कुछ पाप कर्म किया था कि भगवान से कुछ छिपाया, कहते उसके चलते वो निर्धन हुए, लेकिन इसी जन्म में वो निर्धन होने के नाते भगवान को पूरी तरह समर्पित हो गए, भगवान का पूरा प्राप्त। उसी तरह से पिछले जन्म में कोई व्यक्ति निर्धन, कोई पुण्य कर्म फल के चलते उसका प्रारब्ध निर्धन होने का इस जन्म में बना, तो निर्धन होने अर्थात निर्धनता की स्थिति में व्यक्ति ज्यादा अनियमित कार्य नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? कि ये ऐसी पोजीशन में है कि ये व्यक्ति भोग तो कर ही रहा होगा, ये बात दूर के बाद पता भी था और बाद में सब स्पष्ट भी हुआ, लेकिन जब भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो उनके उद्दीपन से उनसे जो सामग्री आती है, भोग विलास की वस्तुओं से जो सामग्री आती है वो उद्दीप्त करती है व्यक्ति को भोग करने के लिए, और उससे फिर व्यक्ति है भोग प्रवृत्ति में अर्थात पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो जो पिछले जन्म का पाप कर्म था उसके फल के चलते निर्धनता की स्थिति इस जन्म में मिली, उसके चलते व्यक्ति को अपुण्य कर्म करने का चांस मिला है या फिर पाप कर्मों में लिप्त होने से बच रहा है। तो ये जो मकड़ी जैसा जो बैर है कि अर्थात पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उससे पाप कर्म की भूमिका बनती है और पाप कर्म कर रहे हो तो पुण्य कर्म की भूमिका बनती है, चल रहा है ये जन्म जन्मांतर से हमारा आपका चला रहा है। तो ये जो हम पॉइंट लेना चाहते हैं वो आगे लेते हैं, जो अगला पॉइंट लेने वो आगे लाइन में लेते हैं। अतः ये उचित ही था कि उन्होंने अपने ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया, अर्थात पाप कर्मों के फलों से मुक्त होके ही व्यक्ति जो है भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान कर सकता है। क्योंकि यदि पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं है तो कामनाएं सताएंगी और कामैस्तैरित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता तम तम नियम आता या कृपया कि कामनाओं द्वारा जब बुद्धि मारी जाएगी तो अन्य देवी देवताओं शरण में जाएगा। और देवी देवता भौतिक है, जो भौतिक है वो भौतिक फल ही दे सकते हैं और जितना है उतना ही दे सकते हैं। अतः अंतवत्त फलम ते साम तद्भवत्य अल्पमेधसाम, देवी देवताओं से प्राप्त फल क्षणिक और सीमित, लिमिटेड एंड टेम्पररी, माने अपने यही खत्म हो जाएंगे। देवान देव जो है अंतिम भक्ता या अंतिम मसी, और बाद में क्या मिलेगा, मरने के बाद जाएंगे तो वहां देवलोक को जाएंगे, वो भी भौतिक जगत नहीं है, माने यही कन्फाइंड, यहां भी कन्फाइंड। तो इसलिए भागवत में कहा है तस्येव हेतो प्रियते तकोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम उपरियध, ऊपर से नीचे के लोगों तक भौतिक जगत में जो भ्रमण करते हुए नहीं मिल सकता उसके लिए कोविद माने विद्वान व्यक्ति को उसकी कोशिश करनी चाहिए, प्रियते प्रयत्न करना चाहिए। तस्येव हेतो प्रियते तकोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम उपरियध तत लभ्यते दुखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हंसा, कि दुख जिस तरह बिना मांगे आ जाता है तो तत्माने को सुख भौतिक सुख जो हम चाह रहे हैं वो भी बिना मांगे आ जाएगा। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, कि समय की बात है, कालीन सर्वत्र गभीर हंसा वो आ ही जाएगा। तो उसके लिए कोशिश करनी नहीं है, जो लिखा है प्रारब्ध मिलके रहेगा, चाहे सुख हो या दुख हो, तो विद्वान व्यक्ति को इसे चक्कर नहीं फंसना चाहिए। लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष नियमों को वे ही स्वीकार करते हैं जो पाप कर्मों के फल से मुक्त नहीं होते। वैदिक कर्म कांड में वेदों में जो ये ज्ञान कांड उपासना कांड कर्म कांड ये विभाग हैं वो इतने विस्तृत रूप हैं, वेद इतने विस्तृत रूप हैं कि वेद वेदों की समरी करके या निष्कर्ष तय कोई व्यक्ति इस पर पहुंच नहीं पाता है, पर्टिकुलरली कलयुग में नहीं पहुंच पाएगा कि इनका निष्कर्ष भगवान ही है। श्री कृष्ण वेदे सर्वे हम वेद्यो, भगवान कहते हैं कि सभी वेदों द्वारा जानने वाली चीज है वो कौन है, मैं हूं। वेद प्रति ब्राह्मण का मतलब ये हुआ था कि ब्राह्मण वो जो वेदों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि वासुदेवम सर्वमिति और वैष्णव बन गया। ऐसे ब्राह्मण को कोई व्यक्ति एक पैसा भी दान दे तो कहते हैं कि अनलिमिटेड फल था उसका, अर्थात भगवान की भक्ति मिलती थी। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भगवत गीता 3 कैटेगरी के लोगों के लिए बोली गई, स्त्रियां वैश्य और द्विजबंधु, शूद्र और द्विजबंधु। द्विजबंधु का मतलब यह है, द्विज मत में ये ब्राह्मण जन्म जाए थे शूद्र, अर्थात जन्म हुआ लेकिन बाद में जाके उनका द्वारा उपनयन संस्कार होता है तो उससे वो द्विज मन द्वारा जन्म होता है, लेकिन उनके बंधु मन उनके जो मित्र हैं वो तो द्विज नहीं है, तो उनको सेकंड कैटेगरी कहा गया। इन लोगों को पर्याप्त बुद्धिमान नहीं कहा गया, तो कम बुद्धिमान लोगों के लिए भगवान ने बहुत ही सरल भाषा में भगवदगीता बोली। भगवदगीता की भाषा बहुत सरल है, भाष्य वही सरल होता है जो बहुत सरल भाषा में बोला जाए। भगवदगीता की भाषा है जैसे संस्कृत में बहुत आसान याद हो जाती है, लेकिन भागवत बहुत कठिन है। तो भगवान ने इतने स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता बोली और ये मीन थी उस समय के कम बुद्धिमान लोगों के लिए। लेकिन जब प्रभुपाद एक प्रोफेसर से चर्चा कर रहे थे तो उनसे बोले कि डू यू बिलीव इन सोल, और क्या आप विश्वास करते पुनर्जन्म में, तो वो प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता पुनर्जन्म में, और न मैं आत्मा में विश्वास करता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि ये शरीर ही मैं सब कुछ हूं, और मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोले, आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर हो, और आज की तारीख में आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाने चाहिए आपको, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी, फिर आप बहुत ही टॉप क्लास प्रोफेसर, तो दुनिया फिर आपको सबसे बड़ा प्रोफेसर मानेगी ना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानेगी ना। लेकिन आप भगवद गीता नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आप अपने शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हुए हो। अर्थात जो 5000 वर्ष पहले कम बुद्धिमान लोगों के लिए चीज मानी गई थी, वो आज के सबसे बुद्धिमान लोग नहीं समझ पाएंगे भगवद गीता। प्रभुपाद सेड, दिस इज वॉट कली कैन डू। कली क्या कर सकता है, वो यही कर सकता है कि आप जैसे प्रोफेसर क्रिएट हो जाएंगे, और वो जो है बहुत ज्यादा सम्मानित होंगे, उनकी पूजा होगी, लेकिन ज्ञान के नाम पर उन्हें कुछ नहीं होगा। ये धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष नियमों के स्वीकार वही करते हैं जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होते हैं। धर्म को जो ये कर्म कांड है, माने धर्म का मतलब है हम कुछ पायस एक्टिविटीज करें, जो कर्म कांड दिया है वेदों में, और वो पायस एक्टिविटीज संपन्न करके हम कुछ अर्थ कमाएं। अर्थ माने पैसा, या फिर जीवन को आसान बनाने के संसाधन जुटाने, और फिर उसके बाद में कुछ ठीक है उनसे ऐसो आराम भी शरीर को हम दे लें, फिर उसके बाद में मोक्ष की इच्छा हो जाए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। लेकिन है क्या मुक्ति, मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान, कि कोई भी इच्छा है चाहे भुक्ति की हो, भोग करने की हो, चाहे वो मुक्ति की हो, चाहे वो सिद्धि की हो, लेकिन इच्छा है तो इसका मतलब आसान, और अशांत मन क्या करेगा, कंटेमिनेशन शुद्ध हो ही है ना, अशांत मन कंटेमिनेशन रहेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, केवल कृष्ण भक्ति ही मन को शांत कर सकती है। तो अतः ये यहां तक कि काम की या मोक्ष की भी इच्छा लोग करने लगते हैं तो वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी इच्छा है ना, डिजायर है ना। और जो अर्थ की बात यहां पे कही गई है, ये आजकल की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये बिल्कुल खोखली है। क्यों खोखली है? एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी विल बी ए हॉलो। कोई भी अर्थव्यवस्था जो एग्रेरियन, जो कृषि पे आधारित अपने को प्रगत नहीं कर रही है, वो अपने में एक खोखला होगी। ये यूएस में कुछ समय पहले क्यों ये क्रैश, दो साल पहले क्या हुआ था, दो साल पहले बहुत ज्यादा एकदम से अर्थव्यवस्था क्रैश हुई थी ना यूएस में। पिछली साल सुना था मैंने कि ओबामा बैरक को रात 7 दिन नहीं सोया था, वो उसको कुछ कर्ज चुकाना था, उसको कर्ज दोबारा मिलने के लिए, उसको दोबारा कर्ज लेने के लिए देवर सर्टेन थिंग्स विच ही हैड टू डू विद द वर्ल्ड बैंक, आई डोंट नो विच बैंक, और उसके लिए वो 7 दिन नहीं सो पाया था। अमेरिका जो आजकल का तथा कथित सबसे धनी देश है, वो ये बिल्कुल पेपर में आया था, हेडलाइन थी कि वो 7 दिन तक नहीं सो पाया बिकॉज उसको कर्जा नहीं मिल सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन यूएस गवर्नमेंट की नहीं है। तो आखिरकार जब यूएस सबसे धनी देश है तो उसको कर्जा क्यों लेना है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी अर्थव्यवस्था है जो एग्रेरियन उस पर बेस नहीं है, चाहे वो पशुपालन, उसमें गाय प्रमुख, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये बेस्ट का ये स्वभाव जो कहा गया, अर्थात कृषि करे, गोर अच्छा करे, और फिर इसी का बिजनेस करे, माने इन्हीं के लेवल पे लेन देन करे। और ये जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को थोड़ा हम अफीम चरस गांजा आज ये भी हम खेतों में उगाने लगे, तो इससे अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। खोखली कैसे, व्यक्ति को 1,00,000 रुपये सैलरी मिल रही है लेकिन महीने बचता कुछ नहीं, खा पी के सब बराबर हो जा रहा है, तो किस बात की 1,00,000 की सैलरी उठाओ। एक समय था 10 रुपए सैलरी लोगों की होती थी, और 10 रुपए में लोग जो महीना चला लेते थे वही आराम की अच्छी जिंदगी काट लेते थे, और आज 1,00,000 रुपए में आदमी वैसी जिंदगी जी रहा है, तो क्या ये 1,00,000 रुपए खोखला है कि नहीं है? पैसे के मूल्य में जो निरंतर कमी होती जा रही है, जो डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी हो रहा है, ये खोखली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और जो अभी कभी डॉलर स्ट्रांग हो जा रहा है, कभी ये सुप्रेम स्ट्रांग हो जा रहा है, कभी वीक हो जा रहा है, और ये इम्बेलेंस हो रहा है, माने वो कभी हमेशा स्ट्रांग नहीं रहा, ये नीचे ऊपर जो चल रहा है, या फॉर दैट मैटर जो आपका ये स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है जो इंडिकेट करता है, ये खोखली अर्थव्यवस्था का इंडिकेशन है। स्टेबिलिटी होगी तो सब शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। तो ये जब भी अर्थव्यवस्था ये इस पे बेस्ड होगी, जो एग्रेरियन समाज पे नहीं बेस्ड है, तो वो खोखली होगी या खोखलापन ये कलयुग में बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी जमीन है ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा रही है, माइनिंग चल रही, पता नहीं क्या क्या चल रहा, आप देख रहे हो। तो ये सब होता जाएगा और ये खोखलापन आता जाएगा, और फिर क्या होगा, दुर्भिक्ष की स्थिति और भूखा मरी की स्थिति आएगी, आदमी आदमी को खाने को तैयार होगा, तभी होगा, क्योंकि पेट पालने की तो आदमी कुछ भी करेगा। अतः एक चीज हो जानी है, व्यक्ति इसी शरीर में रहते हुए भगवान नाम क्यों नहीं जा सकता है पूरा शुद्ध होने के बाद भी, क्योंकि इस शरीर के निर्वाह के लिए जो हम शुरू करते हैं ना, इस शरीर के निर्वाह के लिए हम नेचर का एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो अगले वाले लाइन में ले लेता हूं। ऐसे लोग उपरोक्त चार नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण तुरंत ही वैकुंठ लोक में भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते। चार नियमों के कलमश जो हम लोग फॉलो करते हैं, और वो कलमश जो है इन चारों लोगों में, इन धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले लोगों में जैसे रहता है, और वैकुंठ लोक भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की माया के अधीन है, किंतु वैकुंठ लोक की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। दुर्ग का मतलब यह है किला, उसकी लंबी लंबी दीवारें होती है, माने जिसको हम लांग न पाए। और दुर्गा का मतलब यह है जो इस संसार रूपी किले की जिसकी ऐसी दीवारें जिनको हम लांग नहीं सकते उसकी रखवाली करें। तो इन्हीं में दुर्गा जी की जो पोजीशन है वो है क्या, सुप्रिंटेंडेंट। किसकी, दुर्ग माने जेल, ये संसार रूपी जो जेल है इसकी रखवाली कर रहे दुर्गा जी और सुप्रिंटेंडेंट दुर्गा जी। और जिस तरह जेल में कैदियों को पनिशमेंट भी दिया जाता है, प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, उसी तरह संसार रूपी जेल में दुर्गा जी जो जेलर हैं उनका काम ही है बांध के डाल देना यहां पर, तो वो पनिशमेंट भी देती प्रोटेक्शन भी देती हैं। प्रोटेक्शन भगवान के भक्तों को पूरी तरह मिलता है, और जीवों को और जीवों को मारा तो जाता है लेकिन कुछ समय रहने भी दिया जाता है, लेकिन उनको जो पनिशमेंट है वो त्रिशूल, जो त्रिशूल है वो तीन तूल आद दैविक आद भौतिक आध्यात्मिक जो तीन ताप हैं वो दुर्गा जी के हैं। दुर्गा जी का ये कार्य है, वो जेलर है, जेलर है। भगवान की पूरी व्यवस्था में दुर्गा जी की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल है, और उनको ये त्रिशूल दिया गया है, तो वो त्रिशूल ही आद दैविक आध्यात्मिक और आद भौतिक जो तीन तरह के ताप है वो सभी जीवों को दिया जाता है। क्यों, ये पनिशमेंट है। किस बात का पनिशमेंट है, हमने वायलेशन किया संविधान का। क्या संविधान, जीवेर स्वरूपेण है कृष्णे नित्यदास। अपनी कंस्टिट्यूशनल पोजीशन तो ये थी कि हम नित्यदास भगवान के रहते, लेकिन हम स्वामित्व की भावना से यहां आ गए। वैकुंठ लोक में जो स्थिति भगवान की थी कि उनकी हजारों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, उनकी सेवा हो रही, वैसा हमने अपना वैकुंठ लोक इस कुंठ लोक में बनाया। ये जितने भी गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ घर है, ये सब हमारे अपने छोटे छोटे वैकुंठ घर है, हमने बनाए हैं। एक पत्नी माने एक लक्ष्मी, बच्चे, और जैसी भगवान की सेवा हो रही वैसे हमारी सेवा हो। तो हमने इस कुंठ जगत में अपने अपने छोटे छोटे वैकुंठ बताए हैं, लेकिन चूंकि जगत कुंठा जो पूर्ण है, अतः यहाँ पे वैकुंठ संभव ही नहीं है। तो लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि व्यक्ति शरीर में रहते हुए ही भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको किसी न किसी तरह से शरीर के निर्वाह के लिए, ये शरीर बनाए प्रकृति के तीन गुणों से, और शरीर के निर्वाह के लिए उसको प्रकृति का आसरा लेना ही पड़ता है। पुरुषा प्रकृति स्थितो हे भुंक्ते प्रकृति जान उड़ान कारणम गुण संगो सत असत्यो निन्यु, और इसलिए उसको सत असत्योनियां मिलती रहती हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि व्यक्ति प्रकृति का बिल्कुल ही एक्सप्लोइटेशन न करे, और वो बिल्कुल ना एक्सप्लोइटेशन में, फिर प्रकृति को खेत जोतना भी आता है, जोते भी हैं, ये एक्सप्लोइटेशन है नेचर का वैसे, ये भी। अर्थात जो प्रकृति से प्रदत्त है पानी या फल उसे ही रहे, और बिल्कुल ब्रह्मचारी का जीवन बिताए, बिल्कुल ब्रह्मचारी का जीवन बिताए, और भगवत भक्ति में नितान स्थिर रहे, और जो भी फल मिल रहा है और जो जल मिल रहा है प्रकृति का बिल्कुल एक्सप्लोइटेशन न करे। मैं अपने स्तर पर इस बात से कह रहा हूं कि वो शायद इस शरीर रहते हुए भगवान के धाम जा सकेगा, क्योंकि मैटेरियल नेचर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेटिव जो हमारी टेंडेंसी है वो एक तरह से दुर्गा जी के साथ चिरखानी है। सिंपल, ये सिंपल मैटेरियल नेचर जो भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी हैं उनके साथ छेड़खानी है। और ये बड़ी बड़ी मायने या अदरवाइज जो कुछ भी चल रहा है आजकल इस दुनिया में, ये उनके साथ भयंकर छेड़खानी है। लेकिन दुर्गा जी हैं, और वो जो महिषासुर है जिसको वो त्रिशूल भोंक रही, वो महिषासुर हम ही सब लोग हैं जो इस भौतिक जगत में जो आनंद उठाना चाहते हैं, जो छेड़खानी कर रहे हैं, उन्हीं को त्रिशूल भोंका जा रहा है ये तीन ताप का। तो ये आजकल के तथाकथित बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, या हम सब लोग उनमें शामिल जो इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ पैदा हो गए हैं, वो दुर्गा जी के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम लोग जन्म जरा व्याधि और ये तीन ताप हो गए हैं। और जब तक व्यक्ति सतोगुण में स्थित नहीं होता है तब तक वो ज्ञान या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं आता है। और अपने को सत्वगुण में स्थित करने के लिए या भगवत भक्ति में फिर स्थित करने के लिए व्यक्ति भागवतम का सहारा ले तो अपने आप जैसे पांडवों का जीवन सरल था वैसे जीवन सरल जीवन विश्वास हो जाएगा। सरल जीवन माने कि कम से कम रिक्वायरमेंट में जीना चाहिए ऐसी हमें समझ आ जाएगी। और जो कम से कम रिक्वायरमेंट में जीवन जीना चाहिए ऐसी समझ आ जाएगी तो कम से कम हम उद्यम करेंगे, कम से कम प्रयास करेंगे, और उससे फिर हम नेचर के साथ कम से कम छेड़खानी करेंगे और दुर्गा जी हमें कम से कम कष्ट देंगी और हम आसानी से भगवान के धाम जा सकेंगे। नहीं तो मैटेरियल सेंस एंजॉयमेंट एंड डिवोशन सर्विस गो इल टुगेदर, ये साथ साथ नहीं चलने वाला। एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तटस्थ हम हैं, किनारे खड़े हैं, या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की शरण ले लें अर्थात यहीं पर रहना चाहें, या अंतरंगा शक्ति की शरण ले लें और बहिरंगा शक्ति हमें फिर जो है माफ कर दे, या फिर हम उनसे दुमुख हो जाए। तो इसका सारांश यही है कि जिस तरह पांडवों ने सारे नियम संपन्न कर लिए थे धर्म के, तो वो नियम हमें सारांश से बता दिए गए हैं और उनको हम फॉलो करते करते हम भी भगवान के श्री चरणों में, उन्हीं के श्री चरणों को चरण लक्ष्य मान के, बिना विधान के उनके चरणों का ध्यान करें और भक्ति में आगे बढ़ें, तो शायद है कि हम लोग भी वैकुंठ पहुंच जाए। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय करने को 5 साल में ज़्यादा हो गया। इसके हिसाब से तो भगवान के चरण तो नहीं उनको मिले, भगवान के धाम ही गए वो, और शरीर सशरीर गए। गलत, एकदम गलत, स्पष्ट है गलत। ये हम भी पहले सुनते रहे ऐसे ही, लेकिन ये उसी तरह से है जैसे किसी के पिताजी के सामने स्वर्गवासी लिख देते, बिल्कुल उसी तरह लोग समझ रहे हैं। इनफैक्ट है क्या कि ये भ्रांति बहुत बड़ी है। जब तक प्रामाणिक संघ नहीं मिलता है तब तक इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते कि स्वर्ग लोग भौतिक लोग में ही है। हम लोग भी नहीं पहले जानते थे, सब कुछ अपने माँ बाप को सब स्वर्ग लोग में भेजना चाहते थे पहले, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि स्वर्ग लोग डिफरेंट चीज़ है और भगवान का धाम अलग है, अब समझ में आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो शरीर गए हैं, इसी शरीर में चले गए, ऐसे ही लिखा है। इंद्रपद, अब मैं भी इस बात को नहीं मानता हूँ देखता हूँ आपको, जैसे आपने कहीं सुना है, लेकिन मैं इस बात को सुन ही रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं इस बात को मानते नहीं। मैं तो इस बात को यही मानता हूँ कि दशरथ महाराज या भगवान के धाम ही गए हैं। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ, जिनके घर भगवान स्वयं आए हों और जिनके योग में जिन्होंने शरीर त्यागा हो, तो सिद्धांत तो कोई जान ही नहीं बनता कि स्वर्ग में जाए वो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। सिद्धांत तो यही कहता है, कोई जान ही नहीं लगता है स्वर्ग जैसा राज को यही प्राप्त नहीं प्राप्त होता देखा जाए तो उनके पास कैसी समझ थी, तो ऐसा सुन नहीं आता कोई, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा। वैसे वैष्णव धर्म ही सनातन धर्म है, क्यों? वैष्णव का मतलब है विष्णु के भक्त या कृष्ण के भक्त। जो कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त होते हैं वो उनकी भक्ति यही समझ के करते हैं कि भगवान के नित्य दास हैं। और जी भगवान का नित्य दास सनातन काल से है, और सनातन काल से यही जीव का धर्म है कि वो जिसका अंश है उसकी सेवा करे। जीवेर स्वरूपेण है कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप ही जीव का स्वरूप ही है, तो भगवान की सेवा करना ही सनातन धर्म है। और जो वैष्णव धर्म है अर्थात जो विष्णु भक्त होते हैं वो भी भगवान को इटर्निटी तक सर्व करना चाहते हैं, या फिर वो जब शरीर छोड़ के चले भी जाते हैं भगवान के धाम में, तो वहाँ सनातन धर्म यही है उनका कि भगवान को इटर्निटी में सर्व करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही चीज़ है। श्री भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद।